नमस्कार। आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है गायत्री उपासना का प्रतिफल, और ये चर्चा हम औसत भारतीय नागरिक को ध्यान में रखकर कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि हम सब समझ सकें कि गायत्री उपासना का असली मतलब क्या है और उसके परिणाम क्या होते हैं, खासतौर पर परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखते हुए जैसा वंदनीय माताजी ने समझाया है।
हाँ, क्योंकि माताजी साफ कहती हैं कि गुरुदेव की जो अद्भुत सफलता थी उसका राज सिर्फ तपस्या मतलब कठिन साधना ही नहीं था, बल्कि वो था व्यक्तित्व का परिशोधन, अपने आप को लगातार बेहतर बनाना। चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं।
जी, वंदनीय माताजी असल में गुरुदेव के पूरे जीवन का एक निचोड़, एक सार प्रस्तुत करना चाहती थी। उनकी उपासना, उनकी साधना और उनकी आराधना, इन तीनों का संगम।
और वो बताती हैं कि बचपन से ही, मतलब जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, गुरुदेव का मन ईश्वर की तरफ बहुत झुका हुआ था।
हाँ, गहरी आस्था थी और उन्होंने गांव के शिव मंदिर में बैठकर गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दिया था बहुत छोटी उम्र में।
अच्छा।
और देखिए, गायत्री मंत्र की यही तो खूबी है कि ये किसी एक जाति या पंथ के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है, सार्वभौमिक है। इसके जो 24 अक्षर हैं, उनमें जीवन की बहुत गहरी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। एक एक अक्षर मानो एक गुण सिखाता है।
तो अगर उन शिक्षाओं को जीवन में उतारा जाए,
बिल्कुल, तो व्यक्तित्व अपने आप सुधरता जाता है, निखरता जाता है, जैसा गुरुदेव के जीवन में साफ दिखता है। और उपासना का मतलब भी यही है। उप माने समीप, आसन माने बैठना, ईश्वर के पास बैठना,
उनसे जुड़ना, एक हो जाना, उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर लाना।
जी बिल्कुल सही।
लेकिन यहाँ वंदनीय माताजी एक बहुत जरूरी फर्क बताती हैं, सच्ची उपासना और सिर्फ रस्म रिवाज मतलब कर्मकांड के बीच का। वो रावण और भस्मासुर का उदाहरण देती हैं।
हाँ, कि उन्होंने भी तो बड़ी तपस्या की थी, बहुत शक्ति हासिल की,
पर क्या हुआ,
उस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और आखिर में खुद का ही विनाश कर बैठे। एक ब्राह्मण पति पत्नी की कहानी भी वो सुनाती हैं।
हाँ।
जिन्होंने सालों तपस्या की पर उनका नजरिया बड़ा सतही था, दिखावा ज्यादा था।
जी, तो उनकी तपस्या एक तरह से बेकार ही चली गई,
कोई लाभ नहीं हुआ।
तो फिर सच्ची तपस्या क्या है, अगर सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है तो?
सच्ची तपस्या है अपने अंदर के इंसान को, अपने व्यक्तित्व को निखारना। ये बिल्कुल सहज होना चाहिए, जैसे आग का काम गर्मी देना है या चंदन का खुशबू देना। ये कोई थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाए। इसी को माताजी व्यक्तित्व का परिशोधन कहती हैं, मन की शुद्धि।
अच्छा।
गुरुदेव ने खुद, परिवार के लोग मना करते रहे, फिर भी जौ की लोटी और छाछ पर 24-24 लाख मंत्र जाप के कठिन पुरश्चरण किए।
24 लाख, ये तो बहुत बड़ी साधना हुई।
जी हाँ, और इस तप ने उनके व्यक्तित्व को अद्भुत रूप से बदला। वो बहुत कोमल, पवित्र और दूरदर्शी बन गए।
तो मतलब ये हुआ कि ईश्वर से जुड़ने, उनकी कृपा पाने के लिए पहले अपने मन की सफाई जरूरी है।
बिल्कुल, जैसे हम किसी दोस्त से या किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं तो कितने अदब से, विनम्र होके मिलते हैं ना।
हाँ बिल्कुल।
तो ईश्वर के सामने जाते हुए तो मन कितना साफ और समर्पित होना चाहिए। गुरुदेव ने उपासना के जरिए लगातार यही किया, खुद को सुधारा।
माजा।
और इसीलिए वंदनीय माताजी उस त्रिवेणी पर बहुत जोर देती हैं।
त्रिवेणी मतलब तीन धाराओं का संगम।
हाँ बिल्कुल, पहला उपासना यानी ईश्वर से जुड़ना, दूसरा साधना यानी अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना, खुद को निखारना, और तीसरा आराधना यानी उस निखरे हुए व्यक्तित्व से बिना स्वार्थ के समाज की, मानवता की सेवा करना।
उपासना, साधना और आराधना।
जी, यही गुरुदेव का रास्ता था। उनका चिंतन, उनका चरित्र और उनका व्यवहार, तीनों में तालमेल था। वे जो सोचते थे वही करते थे, और इससे एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बनता था उनके आसपास।
वो हरिजन बस्ती में जाकर सेवा करने वाला उदाहरण भी इसी का सबूत है ना।
बिल्कुल, उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। समाज की गलत धारणाओं को उन्होंने सीधी चुनौती दी, ये उनकी आराधना थी।
और माता जी ये भी कहती हैं कि असली स्वर्ग कहीं ऊपर आसमान में नहीं है।
हाँ, ये बात बहुत गहरी है। वो कहती हैं कि स्वर्ग यही है, इसी धरती पर।
कहाँ?
एक दिव्य व्यक्तित्व में, एक नेक साफ सुथरा इंसान के अंदर ही स्वर्ग बसता है।
वाह, और गुरुदेव का मिशन भी तो यही था, व्यक्ति में देवत्व का उदय करना,
इंसान को देवता बनाना।
जी,
माता जी खुद बताती हैं कि जब उन्होंने गुरुदेव के इस विराट स्वरूप को पहचाना तो वो पूरी तरह समर्पित हो गईं। उन्होंने अपने सारे जेवर, अपनी जमींदारी का मोह, सब कुछ खुशी खुशी त्याग दिया।
ये तो बहुत बड़ा समर्पण है।
ये दिखाता है कि उपासना की सफलता के लिए विश्वास कितना जरूरी है, अटूट विश्वास। वो शिवजी की पूजा का उदाहरण भी देती हैं कि शिवजी सिर्फ बेल के पत्ते या धतूरा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते।
अच्छा, तो फिर कैसे होते हैं?
वो प्रसन्न होते हैं जब हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने लोक कल्याण के लिए विष पी लिया। वो परोपकार का भाव जब हम अपनाते हैं तब वो खुश होते हैं।
यानी उनके गुणों को अपनाना ही सच्ची पूजा है।
बिल्कुल। गुरुदेव ने क्या किया, अपनी कलम को, अपने लेखन को ही ज्ञान की गंगा बहाने का माध्यम बना लिया। वही उनकी पूजा थी, उनकी आराधना थी। और इसीलिए माताजी हमेशा क्वालिटी मतलब गुणवत्ता पर जोर देती थी, संख्या या मात्रा पर नहीं।
हाँ, ये बात उन्होंने कही है।
वो कहती थी, लोहा मत बनो, सोना बनो, हीरा बनो, मतलब अपने आप को मूल्यवान बनाओ, सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं।
बहुत खूब। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, वंदनीय माताजी के अनुसार सच्ची गायत्री उपासना सिर्फ मंत्र जाप या कोई कर्मकांड भर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो एक पूरा पैकेज है, आत्मशुद्धि, ईश्वर से गहरा जुड़ाव, अपने चरित्र का निर्माण और फिर बिना किसी स्वार्थ के सेवा।
जी हाँ, इन सब का समन्वय यानी मेल, और परम पूज्य गुरुदेव का जीवन इसका सबसे प्रत्यक्ष, सबसे बड़ा उदाहरण है।
सही कहा।
तो ये जो हमारी आज की चर्चा है, ये हमें यही प्रेरणा देती है कि हम रस्मों रिवाज से ऊपर उठें, उपासना के असली मर्म को समझें, साधना से खुद को बेहतर बनाएं और आराधना के जरिए करुणा और संवेदना के साथ दूसरों की सेवा करें।
और यही रास्ता है अपने व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा उठाने का भी और समाज की उन्नति का भी।
बिल्कुल।
अंत में वंदनीय माताजी का हम सबके लिए एक आह्वान भी है, एक पुकार है।
जी, कि हम इस प्रेरणा को लेकर गुरुदेव के जो अधूरे काम है उनको पूरा करने में अपनी शक्ति लगाएं।
हाँ, और एक सवाल हम सबके मन में छोड़ जाती है ये चर्चा कि ये जो त्रिवेणी है, उपासना, साधना और आराधना, इसमें से कौन सा पहलू शायद हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लगता है?
सोचने वाली बात है।
और जो भी जरूरी लगे उसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, कैसे जी सकते हैं,
ये प्रश्न हमें खुद से पूछना होगा और इसका जवाब ढूंढना होगा।